उसका ऐसा कथा है कि दुर्वासा मुनि से राधा रानी को वरदान मिलता है, उसकी कथा पता है आपको? तो वो दुर्वासा मुनि एक बार आते हैं ब्रज में, तब ये सब सखियां जो है ना वो मिट्टी से घर घर का खेल खेलती रहती थी और एकदम मग्न होके खेलते हैं। हमारे जैसे नहीं होता है, जो भी करते हैं पर दिल से और मग्न होके करते हैं। सब लोग ना एकदम मग्न होकर, कोई सब्जी काट रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, और सब सब मट्टी मट्टी का ही है, सब सब्जी मट्टी है, सब कुछ मट्टी है, लेकिन इतना मग्नता में खेल रहे हैं कि उनको लग रहा है कि सब्जी बनेगी अभी, फिर खीर बनेगी, फिर चावल बनेगा, फिर दाल बनेगी, फिर खाएंगे वगैरह वगैरह, उनका भाव है उस समय। तो इतनी मग्नता में ना कुछ सखियां कुछ करने के लिए आगे जाते हैं, तो वहां से दुर्वासा मुनि आते हैं, तो वो इतने भाव में रममाण है, तो वो कहते हैं कि आइए आइए महाराज जी, तो बड़ी गरम गरम खीर बन रही है, आप खाओ। तो वो देखते हैं कि सब मट्टी का ही काम चल रहा है, और वे हमको मट्टी के लिए हमको क्या मजाक समझते हैं, ऐसा करके वो वही चिल्लाने लगते हैं, क्या आप लोग क्या समझते हो अपने आप को, भस्म कर दूंगा आपको मैं सब लोगों को। तो वो बेचारी घबरा जाती है और भाग के राधा रानी के पास आती है। तो कोई बड़े बाबा आए हैं, बहुत लंबी दाढ़ी वाले, बहुत उग्र दिखते हैं, और कह रहे शाप दे देंगे हमको, आपको जला भस्म कर, जला कर सब भस्म कर देंगे। तो राधा रानी एकदम शांत अपना खीर बना रही है चूल्हे पर, और वो वहां तक पहुंचते हैं, तो देख रहे राधा रानी खीर बना रही है। तो राधा रानी कहते हैं महाराज जी इतना गुस्सा क्यों करते हो, भस्म उसमें करने की बातें करते हो, इतना गुस्सा करने के बाद थोड़ी खीर खा लो ना, उसमें क्या प्रॉब्लम। तो वो इतनी मधुर भाषिणी है, उसका भाषण इतना स्वीट है कि वो अभी जो शाप देने के मूड में धमकाने वाले थे, वो एकदम ऐसे एकदम शांत हो गए एकदम, और शांत होकर एकदम हाँ मतलब राजी हो गए, एकदम शांत होकर राजी हो गए। तो तुरंत उसने मट्टी वाले बर्तन में मट्टी वाली खीर डाल के उसको हाथ में दे दिया, और वो तुरंत खाने भी लगे उसको, अभी एक्चुअली रज रज ही खा रहे हैं, लेकिन उनको ना कभी नहीं खाई ऐसे दिव्य खीर खाने का आनंद प्राप्त होता है, उसमें इतना आनंद प्राप्त होता है कि वो खीर खाने के बाद उनकी आंखों से प्रेमाश्रु बहते हैं, और उनको समझ में नहीं आता है कि क्या हो क्या रहा है, आंखों में दिख रहा है कि मट्टी खा रहा हूँ, और मुंह में लग रहा है कि खीर खा रहा हूँ, पेट में खीर खाने का दिव्य अनुभव हो रहा है, आंखों से अश्रु रोमांच खड़े हो रहे हैं, आनंद हो रहा है, तो बहुत प्रसन्न हो जाते हो, समझते हैं कि साधारण बात नहीं है, ये दिखता जैसा वैसा नहीं है सब कुछ, ये सब अलौकिक है सब। तो फिर उसको वरदान देते कि तुम्हारे हाथ से जो भी बनेगा वो अमृत से भी अधिक स्वादिष्ट होगा, अमृत भी तुच्छ रहेगा उसके सामने, दिव्य स्वाद रहेगा उसके अंदर, और जो भी उसको पाएगा वो हमेशा विजयी रहेगा और रोग से मुक्त रहेगा, उसको कोई रोग नहीं होगा कभी, ऐसे तीन वरदान देते हैं। तो फिर वो चले जाते हैं, और वो खबर जो पूरे ब्रज में फैल जाती है कि दुर्वासा जैसे क्रोधी ऋषि ने भी आकर हमारे श्री जी को वरदान दिया है, और ये वरदान है उसका, तो जैसे कि हॉट न्यूज़ है ना, पूरा ब्रज में फैल जाती है, नंद भवन तक न्यूज़ पहुंचती है। तो यशोदा माई तो हमेशा सोचती रहती है कि मेरी कान्हा के लिए तो ऐसा भोजन होना चाहिए, बीमार नहीं पड़ना चाहिए, यशस्वी होना चाहिए, स्वादिष्ट अधिक स्वादिष्ट भोजन मिलना चाहिए, उसका ये चिंतन हमेशा रहता है, कैसे और बेस्ट बनाऊँ, कैसे और बेस्ट दूध निकालूँ, कैसे और बेस्ट मक्खन बनाऊँ, और क्या करूँ। तो वो सोचते हैं कि अभी ये लड़की के हाथ का भोजन है ना, वो कन्हैया को मिलना चाहिए किसी भी तरह से, अभी कैसे मिलेगा, अभी किसी की और कन्या है और वो किसी को बोले तुम आके खिलाओ, कैसे कैसे हो सकता है, मतलब इससे डिफिकल्ट है ना बहुत वो। तो फिर चिंतन शुरू होता है, अभी ये कैसे किस प्रकार से इस कन्या को मेरे घर पर लाया जाए, और किस प्रकार से इसके हाथ का भोजन बनाया जाए, और किस प्रकार से हर दिन इसको ये भोजन मिले, इस पर चिंतन चल रहा है अभी। तो अचानक एक दिन एक उत्सव मनाया जाता है वृषभानु महाराज के घर पे, और नेचुरली जब उत्सव मनाता है तो दोस्तों को बुलाते हैं, तो वृषभानु वहाँ के अच्छे दोस्त हैं, नंद महाराज मित्र हैं, बड़े सखा हैं पुराने, बहुत सबसे पुराने सबसे घनिष्ठ सखा हैं। तो उनको भी आमंत्रण जाता है, रोहिणी माता आती है, यशोदा माता आती है, नंद महाराज आते हैं, कृष्ण बलराम आते हैं, सब लोग आ जाते हैं, और जब आते हैं तो उनका स्वागत होता है, वृषभानु महाराज कीर्ति मैया स्वागत करते हैं उनका, और फिर वो ऐसे जानते ना, अभी आप कैसे अभी आए किचन में गए, फिर कुछ है तो काटने बैठे, कुछ है कुछ लोग कुछ कर रहे हैं, इधर आके बैठ रहे हैं, कुछ संकोच नहीं है ना कि इस रूम में जाना नहीं है, वही इस रूम में जाना नहीं है, ऐसे नहीं, सब लोग अपना अपना प्रेम से सब लोग घूम रहे हैं इधर उधर। तो यशोदा रानी जो है ना वो किचन में आती है जहाँ रसोई बन रही है, और वहाँ राधा रानी ना इतनी छोटी सी बालिका सैकड़ों गोपियों के साथ एक साथ सैकड़ों चूल्हे पर सब कुछ बन रहा है, और वो इतना सुंदरता से उसको कंट्रोल कर रही है सब कुछ बढ़िया से। हाँ, तो इतना सुंदर वो बना रही है, मतलब इसमें अभी खीर बन रही है, इसमें सब्जी बन रही है, इसमें दाल बन रही है, इसमें तल तल रहा है कोई, इसमें कुछ काट रहा है, इसमें कुछ तड़ा तड़का लगाया जा रहा है, ऐसी कितनी चीज़ें एक साथ बन रही हैं, लेकिन वो सब लोगों को इतना ब्यूटीफुली एंगेज किया हुआ है और खुद भी सबसे अच्छा ध्यान रख रही है कुछ भी व्यंजन, और इतनी सुगंध उसमें सब जगह पर। हाँ तो इतना सुंदर उसका जो एक तो कुशलता है बनाने की, और दूसरी कुशलता देखती है कि वो इतनी सुंदरता से उसको मैनेज कर रही है। इतनी छोटी सी बालिका है, कितना बढ़िया उसका ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो आयोजन है वो इतना श्रेष्ठ है, वो देखकर बड़ी प्रभावित हो जाती है। कितनी सी बालिका है, इतनी व्यंजन बना रही है, पूरा इंचार्ज वही है, और इतने लोगों को इतनी सुंदरता से एंगेज कर कर रखा उसने। तो फिर उसको रहा ना जाते, फिर वो पूछते हैं कि मेरी एक विनती थी आपसे कि आपकी राधा रानी को मेरे यहाँ भेज सकते हो क्या आप, ताकि हमारे कन्हैया के लिए अमृत से वैदिक स्वादिष्ट व्यंजन मिले और विजयी रहे, रोग मुक्त रहे, तो कितना अच्छा होगा। तो वो सबके मन में तो वही बात चलती रहती ना, नंदगांव में क्या बात चल रही है कि श्री जी के अलावा और कोई बहू हो सकती है क्या कृष्ण के लिए, इतनी और कोई बेस्ट हो सकती है। और बरसाने में सोच रहे हैं कि हमारी लाली के लिए कन्हैया से बढ़िया दूल्हा कौन हो सकता है, तो सबके मन में यही चिंतन है दिन रात का। और कीर्ति मैया के मन में भी यही चिंतन है कि इतना बढ़िया रिश्ता, इतना बढ़िया मौका, और अभी कैसे बात चलाएं, तो अपने आप ही बातें कर रहे हैं। हाँ, अपने आप ही बोल रहे हैं कि कर सकते हैं क्या, मतलब एक मौका मिला ना और आगे बढ़ने के लिए, तुरंत हाँ कर देते हैं। तो उस दिन से वो सिलसिला चालू हो जाता है, बरसाने से सखियों को लेकर नंदगांव जाना। तो नंदगांव जाने के बाद में यशोदा रानी जो है ना, वो जो नंद सरोवर है ना, जो पावन सरोवर बन जाता है बाद में, वो पावन सरोवर में नंद बाबा के रानी जो क्वीन है, नंद रानी यशोदा माता, उसका एक विशेष घाट है वहाँ पर, प्राइवेट घाट, वहाँ पर बाकी लोग नहीं जाते, नंद बाबा भी और कहीं स्नान करते हैं, उसी बड़े कुंड में कई घाट है ना, कई कई दिशा में बहुत सारा कुछ है। तो वो अपने घाट पर एक कुआं खोदती है, क्योंकि पावन सरोवर खारा पानी का जल है, वो किनारे पे उसके मीठे पानी का कुआं खोदती है, और वो कुएं से जल देने की व्यवस्था करके उधर रसोई बनाती है, और वहाँ पर रसोई बनाई जाती है, वहाँ पर पूरा इंतजाम करके शी कुक्स देर, और फिर उसकी बहुत सारी कहानियाँ हैं। एनीवेज, तो रोज जाती है, रोज बनाती है, कभी कभी जा नहीं पाते तो कहते हैं कि वो ऐसे कमरा भर के लड्डू बना के आती थी, डब्बा भर के नहीं, कमरा भर के लड्डू बना के आती, थोड़ा सा सोचने के लिए टाइम लगता है, कमरा भर के मतलब कैसा होगा वो कमरा पूरा लड्डू भरा हुआ है, उसको बंटा भोग कहते हैं, वो बंटा भोग है ना, बहुत विशेष भोग होता है, और वो इतना महिमा है उसका, वो आटे से और किससे बनता है, बस आटा ही, गेहूं का आटा, शक्कर घी बाकी इलायची हो सकती है उसके अंदर। तो वो जो बनाते हैं गोस्वामी, वही गोस्वामी हमारे घर पे आए थे, उनके दादाजी का ऑपरेशन करने के लिए वो टर्न बाय टर्न आते थे, तो हमको एकदम याद आया, ऐसा कह रहे वो लड्डू बंटा भोग कितना फेमस है नंदगांव का, आप लोग अपने हाथ से भगवान को बना के भोग लगाते हो, हमारे घर में बना सकते हो क्या आप, हाँ बनाएंगे जरूर, क्यों नहीं। तो सब साहित्य उनको दिया जो चाहिए था, अच्छे जैसा माल ला के दिया, और उन्हें बनाया वो, फिर भी वो ना वैसा नहीं बना जो नंदगांव में बनता है, क्योंकि उन्होंने मुंबई में बनाया ना उसको, मुंबई में बनाया, तो वो हाथ थे सब कुछ वही था, लेकिन जगह वही नहीं थी, तो यहाँ बनाया उन्होंने लड्डू वो, लेकिन वैसा नहीं बना, बहुत स्वादिष्ट बना, जैसे कुलिया होता ना, कुलिया वो बांके बिहार में मिलता है, गोपीनाथ में भी मिलता है, दामोदर में भी मिलता है, राधारमण में मिलता है, लेकिन राधारमण का कुलिया डिफरेंट होता है हमेशा, ये उसकी विशेषता है, और आप भी घर में बना सकते हो, और ब्रज के दुकानों में मिलता है वैसे ही, कुल्लड़ में वैसे ही बना मिलता है, लेकिन वो वैसा नहीं होता है, क्योंकि वो स्थान का महिमा है ना वो। तो फिर वो क्या, हाँ तो फिर वो जो बंटा भोग है उसका महिमा ये है कि बंटा भोग जो है ना, उसको तुलसी रखती नहीं है, ऐसे बहुत सारे रख देते हैं और रात भर रखते हैं उसको, भाव ऐसा है उसका कि रात को जब भी उठेगा ना तो स्वीट चाहिए। अभी तुलसी रख दिया तो भोग लग गया तो दोबारा क्या खाएगा फिर वो, जो खा चुका है। इसलिए बिना तुलसी का रखते हैं। तो जब भी रात को उठेगा तभी वो अमनिया, मतलब बिना खाया हुआ भोग वस्तु मिलनी चाहिए, इस भाव से उसको रखते हैं, रात भर रखते हैं। और उसको कई बार ऐसे मनमानी चेंज करते हैं, ऐसा नहीं कि भाई 6 6 बजे 4 रखना है, 4 बजे 3 रखना है, ऐसा कुछ नहीं। जब चाहे जितनी मर्जी रखो, उठने उठा लो दूसरा रखो, लेकिन तुलसी रखते नहीं उसके अंदर। उसको नाम है बंटा भोग, और बहुत स्वादिष्ट होता है वो राधा रानी कभी कभी कई दिनों के लिए एक साथ बना के आती है, कभी रोज जाने का मौका नहीं मिलेगा तो। ऐसा सिलसिला चलते रहता है। तो फिर राजा राधा रानी बनाती है, फिर वो कृष्ण भगवान सबको लेकर भोजन के लिए आते हैं, तो सब लोग लाइन से भोजन में बैठते हैं, और राधा रानी खिड़की में छुप के शर्मा कर खड़ी है और झरोखे से देख रही है कि कौन क्या खा रहा है और हमने क्या बनाया और कैसे खा रहे हैं, ऐसे सब देख रहे हैं उधर से। तो कृष्ण भगवान फिर अचानक उठ के ऊपर देखते, तो देखते राधा रानी देख रही है। तो फिर ऐसा है कि उठा के ऐसे खाते हैं, हे ये क्या चीज़ है, क्या ये लो तुम खा लो इसको। और वो बोले खा रहे हैं वो, वाह क्या स्वाद है, सब तारीफ कर जा रहे हैं। और वही चीज़ कृष्ण खाते हैं तो वो गाली दे रहे हैं उसको, बोले क्या स्वाद नहीं, कुछ नहीं, ना नमक ठीक है, ना ये ठीक है, ना वो ठीक है, वही वस्तु है खाने के लिए। और राधा रानी वहाँ पर नाराज़ हो रही है, हाँ थोड़ी सी दुखी हो रही है, कह रही है मैं इतना भला है, सब लोग आनंद ले रहे हैं और यही एक व्यक्ति ऐसा है कि जो नहीं खा रहा है, और वो बालियाँ बक रहा है उसके लिए, ये भी लीलाएँ होती है। लेकिन जब यशोदा मैया खाती है बचा हुआ तो उसको तो परम स्वाद आता है उसके अंदर। तो फिर बहुत दिन जाना आना चलते रहता है। अभी कैसा है ना, आपकी जो प्रिय वस्तु है ना, समझो समझो कोई युवा अवस्था का व्यक्ति है, उसको एक कोई यंग लड़की अच्छी लगती है, एक बार देखा, बाद में 6 महीने देखी नहीं, तो वो भूल सकता है क्या, ठीक है अभी मन में था, वो मेमोरी भी नष्ट हो गई। लेकिन वही कन्या अगर रोज उसके सामने आएगी तो उसका रोज भाव बढ़ेगा ना, कि रोज उसको लगेगा अरे 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 ये काश मेरी पत्नी बनेगी तो कितना अच्छा रहेगा। जितनी ज़्यादा मिलेगी उतना ज़्यादा उसका इंटेंसिटी बढ़ेगा, तीव्रता बढ़ेगी। तो ये यशोदा माई की अभी जो विषय है वो राधा रानी है, और रोज आकर एक आज क्या बनाया, आज एक क्या करंजी बनाई थी आज, बोले कल क्या मालपुआ बनाया था, परसों क्या मांडा बनाया था, परसों क्या लड्डू बनाए थे, ऐसे एक एक आइटम आप बनाते जाओ और उसका स्वाद चखते जाओ तो फिर क्या कहने उसके। ऐसे रोज उसका अगर अलग अलग व्यंजन के स्वाद ले रहे हैं तो रोज लगाव तो बढ़ रहा है ना, उसी वस्तु के संपर्क हो रहा है आपका रोज, और उसी व्यक्ति के साथ में प्रेम का आदान प्रदान, उसका दर्शन हो रहा है, उसके हाथ का भोजन खाया जा रहा है, उससे बातें की जा रही है, उसकी कुशलता देख रहे हैं आप, उसका सकुशल कौशल्य देख रहे हैं, सब क्या नहीं, सब सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, मतलब एक दिव्य व्यक्तित्व आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। तो दिन ब दिन वो आसक्ति बढ़ती गई, लगाव बढ़ता गया, एक दिन रहा नहीं गया तो गले लगाया, बहुत जोर से आलिंगन दिया, इतना प्रेम का अनुभव हुआ। तो भाव में, जैसे मैंने कहा ना कि प्रभाव देखे, भाव में इतना वो जा रही थी लेफ्ट राइट करके, उसके आगे पीछे कौन है इसको मालूम नहीं था, वैसे जब भाव में आते ना कोई व्यक्ति, आनंद का भाव हो या दुख का भाव हो, बहुत बातें भूल जाते हैं हम लोग कभी कभी। कभी कभी खुशी में क्या करते हैं, जिसको हम लोग ऐसा मस्ती में फटका नहीं मारना, उसको मार देते हैं हम लोग ऐसा, इतना मतलब जब भी कोई नाच रहे हैं कूद रहे हैं तो फिर उस भाव में हम लोग ध्यान रहता नहीं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हम लोग एक लेवल के ऊपर चले जाते हैं। तो वो जब ऊपर चले जाते हैं भाव में अपने, तो ये भूल जाते हैं कि मेरी कन्या नहीं है, किसी और की कन्या है, परमिशन नहीं लिया है, कुछ नहीं किया है, बात नहीं किया है, कुछ नहीं, इतनी भाव विभोर हो जाती है, तुरंत किचन से हल्दी लेती है, उसके हाथ में लगा देती है और फिर जोर से गले लगाती है उसको, प्रेम से एकदम व्याकुल होकर। तो बड़ा उसको आनंद होता है हृदय में, और बाहर से बहुत संकोच भी होता है, हाँ अरे ये क्या हो गया, मतलब सडनली अभी यू डिडंट एक्सपेक्ट दैट कि आज ऐसा होने वाला है 4 बजे जाने के पहले, ऐसा तो नहीं था ना, रोज चाहते हैं बना के रोज चले जाते हैं और रोज जाने के समय पर ऐसा नहीं होता है, तो हाउ टू एक्सपेक्ट दैट, दिस इज बिग सरप्राइज। तभी क्या करेंगे, अभी तो वो हल्दी लगा तो मना भी नहीं कर सकते, इतनी बड़ी मैया है, नंद रानी है। तो फिर वो आलिंगन छोड़ देती है, तो मन में बड़े खुशी के लड्डू फूट रहे हैं, बाहर संकोच भी हो रहा है, तो उसमें चले जाते हैं, जाते जाते हैं, पर इतने तो जब जा रहे हैं ना नंदगांव से बरसाने में, तो मानो ना हवा में उड़ रहे हैं, इतना आनंद हो रहा है। वो गाने ने एक एक पिक्चर में गाना है, मुझे अभी भी याद है, आजकल मेरे पाँव नहीं ठहरते जमी पर, ऐसा एक गाना सुना था। उसका अर्थ क्या है कि इतनी खुशी है जिंदगी में आजकल कि मेरे पाँव जमीन पर ठहरते नहीं है, वो हवा में उड़ते रहते हैं। तो वैसे दिव्य आनंद का वो अनुभव कर रही है कि आज इस घटना के माध्यम से श्री कृष्ण मेरे हो जाएंगे। और हमने कुछ नहीं किया है, मैया ने अपने आप ने ही ये कार्य किया है और कार्य करके प्रस्ताव रखा है कि अभी कृष्ण हमारे हो जाएंगे। तो रास्ते में आनंद के मतलब अतिशय आनंद हो रहा है। तो ये चर्चा भी हो रही है कि अभी विवाह हो कर दोगे क्या? हाँ, अभी ये बहुत डिटेल डिस्कस कर रहे हैं और रास्ते में आनंद में जा रहे हैं और वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि अब तुम्हारा विवाह हो जाएगा तो तुम्हें क्या पसंद है, विवाह करके बंधन में अड़क फंस जाना पसंद है कि ऐसे ही अविवाहित रहकर रोज आना जाना वही चटपटी बातें वो अच्छा रहेगा? तो राजा रानी एकदम पजल में आ जाते कि अभी एक्चुअली मैं क्या करूँ, विवाह करके एक ही बार उसमें घर में जाऊँ, रोज मेरे प्रियतम को देखते रहूँ दिल भर के, कि रोज ये आना जाना रखूँ और अपनी मेरी भी फ्रीडम थोड़ी रखूँ, फ्रीडम रहूँ थोड़ा, तो अपने आप खेल भी सकूँ, अपने आप जा भी सकूँ, जब मर्जी उनको मिलने जा सकूँ, ऐसे रखूँ कि विवाह बंधन में फंस जाए। दोनों तरफ से आकर्षण है, ये भी आकर्षण है, उसमें भी आनंद है, इसमें भी आनंद है, और प्रियतम का दर्शन रोज होगा तो उसमें भी आनंद है। ऐसा दोनों चर्चा चर्चा सब ललिता विषय का सब चर्चा करते 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 आनंद 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 में बरसाना आ जाता है। तो बरसाना जब आते हैं ना तो बरसाना के लोग दिखाई पड़ते हैं, तो कुछ कर रहा है, कुछ बैल को खींच रहा है, कोई कुछ कर रहा है ऐसे। तो जैसे ही बरसाने के लोग दिखाई पड़ते हैं तो ये होश में आ जाता है, अरे बाप रे, अभी कहीं उन्होंने राधा रानी का हाथ देख लिए तो पूरा सब गड़बड़ हो जाएगा, अभी फिर क्या होगा कोई बता नहीं सकता है। तो फिर एकदम वो चर्चा कर रहे थे ना अभी, शादी करें कि फ्री रहे इसका रूपांतर किस में होता है, अब क्या करें? तो ललिता कहती है, अरे तो बड़ा गड़बड़ हो गया अभी, अभी ये हाथ पिल लेकर कैसे घर जा सकते हो तुम, 50 प्रश्न पूछेंगे, हमको भी पूछेंगे, आपको भी पूछेंगे। नहीं नहीं आप चिंता मत करना, ये पिताजी का जो सरोवर है उसका नाम प्रिया कुंड था पहले, ब्रिश्वानु कुंड भी कहते हैं उसको, उसमें आप ना अच्छी तरह हाथ धो लेना और हम भी आपको सहायता करेंगे वो हाथ को रगड़ने के लिए। हाँ, अभी ना हमारे जो शिवराम स्वामी है ना वो ऐसा वर्णन करते हैं उस घटना का कि राधा रानी अभी विचार में भी है कि विवाह हो जाए तो कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, करूँ कि नहीं करूँ, और घर में क्या कहूँ क्या कहूँ, मतलब बहुत मन में प्रचंड प्रेम भरे विषयों का कल्लोल है, मन में बहुत विचार मिक्स हो रहे हैं और एक दिव्य आनंद का अनुभव भी हो रहा है, क्योंकि मैया ने गले लगाया था, हाथ में हल्दी लगाई थी, उसमें भी एक दिव्य आनंद था, उसका आनंद तो अनुभव करते करते ही आ रहे थे। अभी वो विचार कर रही है, हाथ को मल रही है पानी में डालकर, ऐसे पकड़ो ड्रेस को, ऐसे ऐसे पकड़ो, वैसे ना ऐसे, समझ में आपको आ रहा है? मग्नता है पूरी ऐसी, और हाथ को मला जा रहा है और हाथ पानी में है, वैसे सोच एकदम दिव्य आनंद में ऐसे एकदम मल रही हाथ, ठीक है। अभी हाथ की हल्दी तो कब की जा चुकी, उसके बाद भी कई देर तक वो मली रही है, मली रही है, मली रही है, दिव्य आनंद का अनुभव कर रही है। फिर आके सखियां जगा देते, अरे हो गया अभी चलो, तो फिर वो होश में आती है और फिर चले जाती है। और घर चले तो नित्य कार्यक्रम जो भी होता है, नित्य कार्यक्रम जो होता है उसमें जो भी है, भोजन करना है तो सोना है, सो जाती। अगले दिन ना सुबह नित्य कर्म शुरू होता ना, सब लोग कुंड पे आएंगे, कोई अपना प्रातर्विधि करेंगे, कोई मुंह धोएंगे, स्नान करेंगे, जो भी कुछ, लेकिन वो पूरा कुंड का जल जो है ना वो पीला दर्शन करते हैं उसका, रोज तो पारदर्शी होता है, पारदर्शी अभी भी है लेकिन वो पीली झलक है उसके अंदर। तो ना मैंने गुरु महाराज से एक बात सुनी थी पहले, क्योंकि हमारे किशोरी माताजी थी ना, है किशोरी माताजी के पिताजी को बहुत तकलीफ हुआ था एक बार, तो महाराज ने उसको पूना में पूछा था कि आपके पिताजी ठीक तो है ना, और फिर वो गई थी घर पे पूना से तो पता चला कि पिताजी बीमार हैं। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे अचानक मेरे गुरुजी ने कैसे पूछा मुझे पूना में, तो कभी फिर एक मौका आया तो उनने पूछा कि उस समय अपने ऐसा पूछा था, तो मुझे अभी भी प्रश्न मन में है कि आपको कैसे पता चला कि मेरे पिताजी बीमार हैं। तो उन्होंने उत्तर दिया कि जब प्रेम होता है ना तो अंदर से पता चलता है कि अपने प्रियतम को, मतलब प्रिय व्यक्ति को क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ सिग्नल मिलता है अंदर से। ये प्रेम का ऐसा एक महात्म्य है कि जिस पर प्रेम होता है ना उसके बारे में इंट्यूशंस प्राप्त होते हैं हमको कई बार, जो सच होते हैं, ऐसा स्वयं राधानाथ महाराज ने किशोरी माता जी को बताया था, और वो घटना का मैं विटनेस हूँ। तो इसी तरह से अभी मैं आपको क्यों बताया, क्योंकि सब लोग प्रेम करने वाले हैं ब्रज में, किसी के मन में कोई द्वेष हिंसा कोई ऐसा कोई भाव नहीं, जलन नहीं है, कोई नहीं है, सब सभी निरपेक्ष प्रेम करते हैं, उसमें कोई ऐसा अपना पराया भाव भी नहीं है, सब लोग निरपेक्ष राधा रानी पर प्रेम करते हैं, नंद बाबा पर प्रेम करते हैं, सब पर प्रेम करते हैं। तो वे हाथ धो रहे हैं, कुछ कुछ काम कर रहे हैं, जल को पीला देख रहे हैं, तो उनको मैंने भ्रम निर्माण हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, क्या हुआ, क्या हुआ रहेगा। तो एक कहता है कि अरे तो वो रोज जाती है ना रोज नंदगांव में, तो रोज रोज भैया देखती होगी उसको, फिर आज उसको कल उसको बहुत ज़्यादा प्रेम आया होगा। दूसरा कहता है हाँ बहुत प्रेम आया होगा तो गले लगाया होगा, और फिर तीसरा बोलता है कि गले लगाने के बाद में भाव विभोर हो गई होगी और अपने राधा रानी को बहू बनाने का विचार मन में प्रबल हो गया रहेगा उसके, तो उस भाव अतिरेक में हाँ मतलब इन एक्सटैटिक मूड वो रसोई में गई होगी। तो चौथा व्यक्ति बोल रहे हैं रसोई में गई होगी और हल्दी लेके आई होगी, तो पांचवा कहता है हाँ फिर हल्दी लेके आएगी उसमें हाथ में लगाया होगा। ऐसे एक एक कड़ी कथा की जोड़ी जा रही है, कल्पना में ही सब कल्पना में ही है, हो गया होगा को कर दिया होगा यही चल रहा है, लेकिन एक 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 करके जब ये कड़ी जोड़ती है तो एक सुंदर कहानी होती है अल्टीमेटली, फिर वो हो गया होगा वो कट होता है और हो गया यही फाइनल होता है। समझ में आपको आया? अभी जब बोल रहे हैं तो हो गया होगा कर दिया होगा ये किया होगा वैसा किया होगा, ये जो टेंस है ना वाक् प्रचार का, ये बदल के हुआ ऐसे किया उसने, फिर गले लगाया, फिर उसने हल्दी लाई, फिर हाथ में लगाई, ऐसे पूरी कहानी बुनी जाती है। और फिर ये तय होता है कि अरे यशोदा मैया ने सगाई कर ली कृष्ण राधा रानी की, उसके आगे की वो खुद ही कल्पना करके उसका स्टोरी बना देते हैं। और फिर वो भी आपने 10 लोगों ने वो कहानी बना ली, फिर आपने कैसे अभी अभी ऐसा नहीं बताया दूसरे को जाके कि ऐसा हो गया होगा, बोला हो गया ऐसे, तो वो हवा की तरह बात फैलती है पूरे बरसाने में। तो अभी सब लोग चर्चा हो रहे हैं चलो जाके बधाई देते हैं कीर्ति मैया को, उनको तो पता ही होगा ना सब कुछ, अभी इतना बड़ा घटना हो गया तो थोड़ी पता नहीं होगा, हमको नहीं बताया होगा लेकिन हमको तो पता चल ही गया है। तो ये बिकॉज ऑफ लव दिस हैपन्स, ये प्रेम है, इसलिए वो उनको लग रहा है कल्पना है लेकिन वो सत्य जो है उनके हृदय में प्रकाशित हो रहा है प्रेम की वजह से। किसी को पता नहीं है लेकिन सबको पता है ना, ऐसा लगता है किसी को पता नहीं लेकिन सबको पता है क्योंकि हृदय से वो साक्षात्कार हो रहा है। तो फिर सबको पता चलता है, फिर सब लोग ना खुशी मनाकर एकदम आराम से खुशी से ब्रजभानु महल पहुंचते हैं और बधाई देने लगते हैं उनको। अभी आप जस्ट सोचो अभी आपके घर में जवान लड़की है, कुछ भी बात नहीं, किधर भी कुछ भी नहीं, विचार भी नहीं, अभी मतलब विचार तो है लेकिन कुछ कॉन्क्रीट नहीं हो रहा है, कुछ नहीं ऐसे चल रहा है, लेकिन सडनली आके आप किसी को आपको कोई बधाई देता है कि ये लड़के की सगाई के लिए आपको बधाई हो, अरे यार इट्स टू मच ना, लाइक किसी का नाम लेके आपकी लड़की के लिए अगर बधाई दी जाए तो इट्स अ टू मच बिग स्टेटमेंट। तो जैसे ही वो बधाई देते हैं उसके नाम से तो वो क्या कर रहे करेंगे बताएं आप क्या करेंगे, जो मैं पिताजी हूँ और ब्रजेश्वरी माता जी हैं और रूपमंजरी के बारे में शादी के पहले ही कोई आके बोलता है कि प्रेम कीर्तन का आपका सगाई हो गया बधाई हो आपको, तो हम क्या करेंगे बताइए, हम दोनों मिलकर रूपमंजरी की ओर देखेंगे है ना, क्योंकि अभी हमको तो कुछ पता नहीं है और ये जो बोला जा रहा है हमारे को पता नहीं, मतलब एक ही को पता हो सकता है वो है लड़की, तो ये दोनों वृषभानु महाराज कीर्ति मैया राधा रानी की ओर देखते हैं, मतलब उनके आंखों में प्रश्न चिन्ह है ना, वो नजर कैसे होते ना सभी है ना, तो वो नजर में सब कुछ इशारा है पूरा कि क्या है स्वमरम क्या है प्रश्न क्या है, तो वो नजर से जब प्रश्न पता चलता है तो राधा रानी तुरंत सर झुका लेती है। और मौन के बारे में एक श्लोक है वो ये है कि जब मौन होता है तो मौनम स्वीकृतिम, मतलब स्वीकृति करते हैं आप उसको, आप अगर उसको क्रॉस नहीं करते हैं, उसको अगर काटते नहीं उसको, मतलब वो सत्य है। मैंने कहा आप चोर हो और आप कुछ नहीं बोलते हो, मतलब आप एक्सेप्ट कर लेके आप चोर हो, आपने वो बर्फी खाया था ना और आप कुछ नहीं बोलते हो, तो मतलब आपने आपने खाया है, आप नहीं बोला वो आपका चॉइस है लेकिन आपका नहीं बोलना ये आपकी स्वीकृति है, तो वो कुछ बोलती नहीं और सर झुकाते मतलब उसको एक्सेप्ट करती है वो, तो उनको ना गुस्सा नहीं आता है, उनको बड़ी खुशी हो जाती है तुरंत। राधा रानी को लग रहा है कि अभी डांट पड़ेगी मुझे, यही सिखाया था क्या, यही तुम्हारे संस्कार है कि बरसाने से जाती हो, कुछ काम से जाती हो, सकाई करके आ जाती हो। कौन से धर्म का संस्कार है ये? किसने सिखाया तुमको? हमने सिखाया थोड़ी ऐसे। और हमारे क्या होगा, हम राजा हैं बरसाने के, क्या कहेंगे लोग कि बरसाने की कन्या का संस्कार यही है कि किसी घर में जाके खुद सगाई करके आती? ये सब डांट सुनने की अपेक्षा है। तैयारी भी है उसकी, भी सुनना पड़ेगा, अब क्या करें। लेकिन उसके बदले में तो गले लगा देते उसको, आलिंगन लेके चूमते, अरे ये तो कई दिनों की दिल की बात है, अपने आप सफल हो गई। हाँ, अपने आप सफल हो गई तो फिर वो खुशियां हो जाती उधर। अरे मतलब लड़की वालों को जिसके साथ विवाह करना है लड़की का, वो खाली योजना बनाते रहते, कैसे बात करें, कैसे बात करें, कब करें, किस समय करें, किस समय करें, उसका एक ढूंढते रहते हैं मौका। तो ये तो सामने से ही पूरा डन डन के रूप में जॉब आ जाता है आपके पास। मतलब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप उन्होंने एडवांस करके एक एक्टिविटी करके अपने को ऑलरेडी एक रिपोर्ट दे दिया है। तो कितना आसान कर दिया, अभी खाली हमको ऑली आगे का सेलिब्रेशन करना है बस, दैट्स ऑल, और कुछ बचा नहीं है। सेलिब्रेशन का प्लानिंग करो। तो पहले क्या करना चाहिए? तो सब लोग कहते हैं अरे पहले सबसे तो आपको ये मंजूर है, ऐसे आपको तोहफा भेजना चाहिए उनको। हाँ, अभी ये यहाँ का सीन हाँ हो गया। फिर उधर बोलते सबसे बड़ा वो वृषभानु महाराज का ऐसा है ना, वृषभानु महाराज है ना नंद बाबा से कई गुना रिच है। कारण क्या उसका? राधा रानी उनकी बेटी है, सारे ऐश्वर्य का उगम जो है उनके घर पे। तो ऐसे भंडार है उनके पास रत्नों के जो किसी के पास नहीं है। और ऐसे भी लिखा गया है कि नंद बाबा अमीर नहीं थे बिल्कुल, लेकिन दोस्ती खाते में वृषभानु महाराज ने अपना एक हिस्सा उनको दे दिया, उसका राजा बना दिया उनको। तो ये कृष्ण भगवान और राधा रानी जब झगड़ते ना कभी, वो साखरी कोर की जिला में, तो झगड़े में ये चर्चा आती है उनकी, बाद में बताता हूँ। तो वो नंद बाबा के पास भी उतनी दौलत नहीं है जितनी वृषभानु बाबा के पास है। तो मोतियों का भंडार खोल देते हैं और बैलगाड़ी में डालते हैं और ब्राह्मण को बिठाते हैं उसके ऊपर, संदेश के साथ पूरा मैसेज के साथ में भेज देते हैं। अच्छा, यहाँ पर यह सीन अभी चल रहा है, उधर क्या चल रहा है? अभी वो जो हवा में थी ना, कौन? यशोदा माई। वो फिर कुछ देर के बाद जमीन पे आ जाती है। तो जमीन पे आ जाती तो उसको पता चलता है मैंने क्या किया। जब भाव विभोरता में कुछ सेंस का ध्यान नहीं किया, तर्क का ध्यान नहीं किया, अभी तो पूरे होश आ गए उसके। अरे मैंने क्या किया, क्या सोचती होगी कीर्ति दीदी? हाँ, कि यही नंदगांव के रिवाज है कि किसी बहाने लड़के को ले जाना, ये करने के लिए बोलना कि वो वरदान मिला है, ऐसे मिला है, ऐसे मीठी मीठी बातें करके ले जाना, और किसी की कन्या को बिना बताए कुछ किए हुए सीधा वाग निश्चय कर देना। ऐसे ही कीर्ति मैया सोचती होगी, कीर्ति दीदी हमारे बारे में क्या सोचती होगी, नंदगांव के बारे में क्या सोचती होगी, नंद बाबा के बारे में क्या सोचती होगी, क्या इनके कल्चर है, क्या रिवाज है, क्या संस्कार है इनके। कितना उनको अपने आप को घिरौना लग रहा था कि मैंने इतना ऐसे कार्य कैसे किया, मैं ऐसे कैसे भावीवर हो गई मैं। तो जाके पति को बताया, पति भी पत्नी का कार्य देखकर बहुत नाराज हो गया, अभी क्या तुमने ऐसा क्यों किया, अभी मैं क्या मुंह दिखाऊं और क्या जस्टिफाई करूं, क्या जवाब दूं उनको कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे समझाऊं और किस प्रात से मैं उनको बनाऊं कि ये सही हो गया, गलत नहीं हुआ, ये गलत ही हो गया, अभी मैं तो पूरा शर्मिंदा हूँ उसके बारे में। ऐसे चिंता का माहौल है घर पर नंदगांव में, और अभी सन्नाटा क्यों है कि इसका रिएक्शन क्या होगा आगे पता नहीं है। अभी वहाँ से क्या संदेश आएगा, किस प्रकार का संदेश आएगा, क्या होगा, क्या जवाब देना है, उसका कंसिक्वेंस क्या होगा, कुछ पता नहीं है, पूरा टेंशन है पूरा घर पे। उतने में बैठे हैं तो दूर ऐसे बोलते कभी कभी सुनने में देखते हैं उदास होकर, तो दूर देख रहे तो एक बैलगाड़ी दिखाई पड़ती है कि वो बरसाने से आ रही है और नंदगांव की नहीं है। वो कैसा है ना, पुराने ज़माने में ना लोग इतने क्लोज हुआ करते थे, भले लाखों की जनसंख्या लेकिन हर व्यक्ति हर प्रजा को जानता था राजा। यहाँ तक कि अगर आप इस प्रकार से कपड़े पहन के आएंगे ना तो आप नंदगांव की, इस प्रकार से आएंगे तो बरसाने के, पुरुष स्त्रियाँ सब उसका एक स्पेशल होता था। तो दूर से ही पहचानते कि बरसाने से बैलगाड़ी आ रही है और बरसाने का व्यक्ति ब्राह्मण बैठा है उसके ऊपर। तो और टेंशन में आ गया वो, अभी तो मतलब इतनी जल्दी रिएक्शन आ रही है कि अभी क्या करने वाले। तो ब्राह्मण आता है, तुरंत अदब से प्रणाम करता है और उसका क्षेम कुचल पूछते, लेकिन बहुत टेंशन है उनको क्या ब्राह्मण बोलने वाला है। तो ब्राह्मण कहता है कि आपने जो भी कुछ किया हम लोग बड़े खुश हैं उससे, हम लोग उसमें वो कहते ना वो क्या शगुन लेकर आए और बैलगाड़ी प्रस्तुत करते हैं मणियों से भरी हुई। उसके ऐसा लिखा है कि गर्ग संहिता में लिखा है कि 1 लाख मोतियों की बने हुए हार वो बैलगाड़ी में के लिए बेचते हैं उनको। एक माला में बहुत सारे मणि होते हैं, सुंदर सुंदर मणि, बड़े बड़े सुंदर तरह से गुथे हुए। 1 लाख ऐसे मणियों की माला भेजते हैं। जब नंद बाबा को देख देखते हैं ना वो खुश तो हो जाते हैं बहुत सारे, लेकिन एक उनको मन में एक चिंता भी उत्पन्न होती है कि अभी उन्होंने पहले शगुन भेजा है तो हमको भी भेजना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास तो इतने मोती है नहीं, मतलब इतने क्वालिटी के मोती नहीं है, हम लोग कुछ भी भेजेंगे तो इसकी बराबरी के तो हो ही सकती नहीं है, तो ये उनको चिंता लगने लगती है। तो इधर कृष्ण सुनते रहते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ, वो देखते रहते हैं। वो कहते हैं कि क्या चिंता हो रही है आपको, आप मुझे कुछ माला दे देना, मैं उसको तोड़ के मणि खेत में बो दूंगा उसको, और जैसे खेत में एक अनाज का कितने चावल बन जाते हैं वैसे एक मोती के बहुत सारे मोती बन जाएंगे, और फिर वो इकट्ठा करके भेज देंगे उनको गिफ्ट में, उसमें क्या है। तो वो सोचते हैं कि अपना बालक कितना नटखट बालक है, उसको कुछ इतने बुद्धि तो है नहीं, वो छोटा सा बालक है, उसको क्या पता है कि मोती खेत में नहीं बनते हैं, मोती समुद्र में वो शिमले के अंदर बनते हैं, समुद्र के नीचे रहते हैं वो, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वो सारे मोती उस तरह से लाएंगे कि तो वो हमारे पास तो है नहीं, समुद्र कहाँ है यहाँ पर, ऐसे सोच रहे हैं वो। कि लेकिन कन्हैया जिद करता है कि नहीं चाहिए चाहिए, वो मना मना करते रहते हैं और फिर वो रख देते हैं अंदर। तो रात को उठकर ये उसमें से कुछ मालाएं चोरी करता है और जाकर ऐसे करना है उसको पूरे मोती छोड़वा कर उसको जो बाबा का खेत है घर के पीछे वहाँ पर जाके बो देता है, और हरे के ऊपर ब्रज रस डालता है और गो रस यानी कि दूध सिंचन करता है उसके ऊपर, मतलब स्पेशल। हाँ बाकी में पानी फिरते थे, इसके ऊपर दूध डालेंगे सब दूध और घी सब डाल के आते हैं और सो जाते हैं। तो सुबह उठकर वापस देखते हैं तो उसको कुछ मालाएं कम मिलती हैं वहाँ पर, तो पता है चोरी किसने किया है, सबसे बड़ा चोर तो अपने घर पे ही है, ज़्यादा खोजने की जरूरत नहीं है, उसको पूछ लेते हैं। तो वो भी ऐसा बोलते हैं मैंने चोरी नहीं किया, मैंने लिया उसको, आपने माना नहीं कि ऐसा होता है मुझे ऐसे करना है, आपने तो हंसी मजाक में उड़ा दिया, लेकिन मुझे तो करना था तो मैंने वो कुछ लिए मालाएं और उसको तोड़कर उधर लगाया। तो उनको बहुत गुस्सा आता है, अरे तुम क्या पागल लड़के हो, क्या इतना बड़ा कीमती मोती तुमने जमीन पर जाके बो दिए, और बोलते हैं मैंने दूध डाला उसमें दही डाला सब कुछ डाल दिया ऊपर से उसको सिंचित कर दिया, चलो चलो उसको। नहीं, वो कहते आप चलो आप दिखाता हूँ मैं वो कितने बड़े खेत में मोती आ गए। तो वो ढोट उसको गुस्सा भी आ रहा है कि इतने बड़े कीमती मोती उसने जाके बर्बाद कर दिए, और हंसी भी आ रही है कि उसने कितना प्लानिंग बना के क्या क्या किया, और उसको लग रहा है कि उसमें अभी मोती आएंगे, तो वो उठा के मार के हंस भी रहे बीच में कि भाई इसको लग रहा है कि अभी वो मोती के ब्रांचेस होंगे और हर ब्रांच में कई सारे मोती होंगे, वो सब वर्णन करते जा रहा है। तो वो कह रहे चलो बाबा चलो आप चलो चलो मोती आपको दिखाते हैं। तो उनको जाना नहीं है, उनको मालूम है क्या बालक अभी कितना उसका सुनना है और कितना मानना है, तो वो जिद करता है चलो फिर जाना पड़ता है उनको। तो जाते तो देखते क्या है, पूरा खेत अनंत मोतियों से भरा हुआ है, कितनी शाखाएं उस एक एक पौधे को, और एक एक शाखे पर लद रहे हैं मोती, पूरा खेत चमक रहा है। तभी ना हंसते हैं ना उसको डांटते हैं, तुरंत सब मोती बीन लेते हैं। उस समय फारी वो लॉजिक खत्म हो जाता है, अरे हम तो अनाज, उनको क्या लगता है कि हमने अनाज बोए है ना, कोई किने होंगे तो कुछ अनाज आए होंगे, देख लेते हैं जाके उसको, तो अनाज नहीं आए मोती आए हुए। तो सारा लॉजिक भूलकर क्या हुआ चमत्कार, वो सब निकाल कर पूरे सारे मोती बीन लेते हैं और बैलगाड़ी भर देते हैं, फिर अपने ब्राह्मण को बिठाकर उस बैलगाड़ी को बरसाने भेज देते हैं। बरसाने में जब स्वीकार के करते ना उसको, तो राधा रानी वो मोती लेकर डभारा गांव में जाती है, और डभारा गांव में उसको बोती है जमीन पर, और मोती जहाँ बोती है वहां से हीरे उगलवाती है वो डायमंड्स। तो मोतियों की खेती में हीरे उगलते हैं, तो उस कुंड को कहा गया जिस कुंड के किनारे किया गया उसका कुंड का नाम है रत्न कुंड, जहाँ पर राधा रानी ने मोती के बुआई करके हीरे उगलवाए थे। तो इस पे क्या समझ में आता है हमको, क्या समझ में आता है बताइए। कृष्ण ने मोती डाले तो मोती आए, राधा रानी ने मोती डाले तो हीरे आए, तो राधा रानी का श्रेष्ठत्व यहाँ सिद्ध होता है। जो कृष्ण भी नहीं कर सके, उन्होंने कृष्ण से मोती लगाए, एक तो उनके पास से मोती नहीं थे, मतलब एक तो नंबर वन राधा रानी ज्यादा श्रीमंत है, ज्यादा ऐश्वर्यवान है, और जो मोती भेजे वो उनके पास नहीं थे बराबरी के, तो उन्होंने बोए उसको और वैसे ही मोती उपजाए। लेकिन राधा रानी ने वो जो मोती भेजे उसके उन्होंने रत्न बनवा कर भेजे, सो शी इज मोर पावरफुल देन कृष्णा। तो ये पीली पोखर की लीला है, और पीली पोखर की एक लीला नहीं, बहुत सारी लीला है। और क्या सुनना है बताइए आप।